पृष्ठ संख्या 503 अध्याय 18 प्राचीन भारत में लौह काल। आज के विश्व में लोहे की उपयोगिता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। मानव सभ्यता की बहुमुखी प्रगति में लोहे की भूमिका स्वतः सिद्ध है। ताम्र और कांस्य धातु के बने हुए उपकरणों की अपेक्षा लौह उपकरण अधिक टिकाऊ तथा मजबूत होते हैं, परंतु लोहे की विशिष्टता उसकी प्रचुरता के कारण है। लोहे के प्रचलन के फलस्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन घटित हुए। लोहे के तकनीकी ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक क्षेत्र में भी माना जाता है। प्राचीन काल के अनेक साम्राज्यों की शक्ति का स्रोत लौह तकनीक के ज्ञान और लोहे के उपकरणों के व्यापार पर एकाधिकार को माना जाता है। यह बात अब आसानी से नहीं समझी जा सकती है कि कभी ऐसा जमाना था जब मनुष्य लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। मानव के सुदीर्घकालिक इतिहास में लोहे के उपकरणों के प्रचलन की कहानी बीते हुए कल की कहानी है। मानव की तकनीकी प्रगति के इतिहास में लौह धातु के सर्वप्रथम शोधन की घटना का अत्यधिक महत्व है। लोहे का सर्वप्रथम प्रचलन कब और कहाँ हुआ, यह प्रश्न अभी भी विवादग्रस्त है। मिस्र की लगभग तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व की समाधियों से उपलब्ध जंग रहित लोहे के मनके खनिज लौह के स्थान पर उल्का पिंड के लोहे से निर्मित है। लोहे को खान से निकालने तथा धातु शोधन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रचलन संभवतः एशिया माइनर, टर्की अथवा काकेशस के क्षेत्र में हुआ। हित्ती साम्राज्य के कर्णधारों ने इसकी उपयोगिता को समझा और उन्होंने लोहे के ज्ञान के रहस्य को लगभग 1800 से 1200 ईसा पूर्व तक अपने साम्राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं जाने दिया। प्राचीन विश्व के अन्य साम्राज्यों की ही भांति हित्ती साम्राज्य का भी लगभग 1200 ईसा पूर्व में विघटन हुआ। इस साम्राज्य के पतन के बाद लोहे की तकनीक से परिचित कारीगर आजीविका की तलाश में संभवतः हित्ती साम्राज्य की सीमाओं से लगे हुए क्षेत्रों में चले गए और अपने साथ उस तकनीकी ज्ञान को भी लेते हुए गए जिसे हित्ती शासकों ने गुप्त रखने का भरसक प्रयत्न किया था। हित्ती साम्राज्य के विघटन होने पर लौह धातु के शोधन का प्रसार पश्चिमी एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में हुआ। तथापि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को लौह तकनीक के प्रसार का संक्रमण काल माना जा सकता है। ईरान में पृष्ठ संख्या 504 सर्वप्रथम स्याल्क नामक पुरास्थल के नेक्रोपोलिस अ में लोहा मिलता है, परंतु लौह उपकरणों का आधिक्य नेक्रोपोलिस ब में ही दृष्टिगोचर होता है, जिसका कालानुक्रम सी शेफर के अनुसार 1200 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। पाकिस्तान के दक्षिणी तथा मध्यवर्ती बलूचिस्तान के क्षेत्रों में स्थित बृहत पाषाणिक समाधियों में लोहा लगभग 1000 ईसा पूर्व में मिलने लगता है। उत्तरी बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बृहत पाषाणिक और गांधार समाधि संस्कृतियां लौह युगीन हैं। गांधार समाधि संस्कृति की तिथि 900 से 600 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। प्रमुख लौह उपकरणों में भाला फलक, बाण फलक, कीले, डंडे युक्त करछुल, हाथ की अंगूठियां तथा घोड़े के लगाम की गलपट्टी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तान में लोहे का प्रचलन हो चुका था। लोहे का ज्ञान भारत की सीमा के अंदर कब प्रविष्ट हुआ, यह प्रश्न अभी भी कुछ उलझा हुआ है। कभी यह समझा जाता था कि यूनानियों के आने के पहले भारतीयों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इस मत का खंडन प्राचीन यूनानी साहित्य के आंतरिक साक्ष्यों से ही हो जाता है। प्राचीन यूनानी साहित्य के अनुसार सिकंदर के भारतीय अभियान के पूर्व ही भारतीयों ने लोहे के उपकरण बनाने की कला में दक्षता प्राप्त कर लिया था। इस परंपरा के अनुसार भारतीय लोहार लोहे के ऐसे उपकरण बनाते थे जिन पर जंग नहीं लगता था। मार्टिमर, व्हीलर प्रभृति विद्वानों ने कालांतर में भारत में लोहे के प्रचलन का गौरव ईरान के शाखा मनीष शासकों को दिया। यह प्रतिपादित किया गया कि उत्तरी पश्चिमी भारत वर्तमान पाकिस्तान में लोहे के प्रयोग का आरंभ ईरान के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। कई वर्षों तक इस मत को मान्यता मिली रही। 20वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन हुए हैं, उनसे लोहे की प्राचीनता के संबंध में हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में आर्यों के संदर्भ में कुछ मान्यताएं अब सही नहीं प्रतीत होती हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि आर्य भाषा भाषी लोग इस देश में अश्व और लोहे के साथ आए थे, परंतु ऋग्वेद के आंतरिक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में अयश शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसे कतिपय विद्वानों ने लोहा समझ लिया था। ऋग्वेद में यह शब्द लोहे का पर्याय न होकर धातु के सामान्य अर्थ से अर्थ में प्रयुक्त हुआ। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहित अयश और कृष्ण अयश दो शब्द मिलते हैं। लोहित अयस का ताम्र अथवा कांस्य धातु के और कृष्ण अयस का शब्द का प्रयोग लौह धातु के अर्थ में किया गया है। कालांतर में अयस शब्द का प्रयोग सामान्यतः लोहे के लिए किया जाने लगा। कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता में छह अथवा बारह बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। संभवतः इस प्रकार का हल काफी भारी होता रहा होगा। यह ग्रंथ लोहे पृष्ठ संख्या 505 से परिचित प्रतीत होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस हल की फाल लोहे की रही होगी। अथर्व वेद में लोहे की फाल और ताबीज का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लोहे का संबंध कृषक वर्ग से स्थापित किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में लोहे के फाल के तपाने तथा तापानुशीतन का वर्णन मिलता है। इन साहित्यिक साक्ष्यों से इंगित होता है कि भारत में कृषि के लिए लौह उपकरणों का उपयोग 800 से 700 ईसा पूर्व में होने लगा था। रेखा मानचित्र 1 भारत एवं पाकिस्तान लौह काल के प्रमुख स्थल सौजन्य अल्विन 1997। भारत में लोहे की प्राचीनता प्रसार और कालानुक्रम का विवेचन करते समय साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा सकता है। भारत में लोहे के प्रचलन वाले प्रारंभिक क्षेत्रों पर दृष्टिपात करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश पुरास्थल लोहे की खानों के समवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। प्राचीन काल में गांगेय क्षेत्र के मैदानी भाग में भी लौह धातु के शोधन के साक्ष्य पृष्ठ संख्या 506 धातु मल के रूप में प्राप्त हुए हैं। 20वीं शताब्दी के विगत 2-3 दशकों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्खनन कार्य हुए हैं, उनसे लोहे के प्रयोग की प्राचीनता के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई है। भारत की ऊपरी गंगा घाटी एवं दोआब, पूर्वी भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य भारत तथा दक्कन और दक्षिण भारत के इन 4 क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान से प्राप्त साक्ष्यों का पहले ही संक्षेप में उल्लेख किया जा चुका है। उत्तरी भारत 20वीं शताब्दी के 3 दशक पहले उत्तरी काले उपदार मृदभांडों के साथ लौह उपकरण प्रायः सभी पुरास्थलों से प्राप्त हुए थे, जिनकी प्राचीनतम तिथि 600 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। यह कहने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी कि 6 शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के क्षेत्र में लोग लोहे के उपकरणों के प्रयोग से परिचित थे। प्रश्न यह था कि यह जानकारी कब से हुई थी। प्रारंभ में हस्तिनापुर तथा रोपड़ के उत्खननों से चित्र धूसर पात्र परंपरा के साथ लौह उपकरण नहीं, चित्र 2 अतरंजी खेड़ा चित्र दूसर संस्कृति के लौह उपकरण सौजन्य आसी गौड़ 1983 पृष्ठ संख्या 507 मिले थे। इसलिए इन पुरास्थलों के उत्खाताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि चित्र धूसर पात्र परंपरा के साथ लोहे का प्रचलन नहीं था। आलमगीरपुर के उत्खनन से इस पात्र परंपरा के साथ लोहे के उपकरण भी उपलब्ध हुए। ऐसे ही साक्ष्य अहिच्छत्र नोह अतरंजी खेड़ा बटेश्वर खलौहा अल्लापुर मेरठ आदि पुरास्थलों के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। चित्र 3 अतरंजी खेड़ा चित्रित दूसरा संस्कृति के लौह उपकरण सौजन्य आरसी गौड़ 1983। चित्रित दूसरा संस्कृति के लोग सलेटी रंग की थालियों तथा कटोरों का प्रयोग करते थे। चावल तथा जौ की कृषि करते थे। मवेशी भेड़ बकरियां सुअर तथा घोड़े इनके पालतू पशु थे। बांस बल्ली की झोपड़ियों अथवा कच्चे मकानों में रहते थे। हड्डी और तांबे की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते थे। लौह उपकरणों में बाड़ फलक भाला भलक कटार खुरपी मछली पकड़ने की कटिया चिमटा वसला तथा कीले आदि बनाते थे। हस्तिनापुर से लौह धातु मल तथा अतरंजी खेड़ा से धातु मल एवं धातु शोधन में प्रयुक्त मिट्टी की भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह इंगित होता है कि धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। चित्रित धूसर पात्र परंपरा का कालानुक्रम 9वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में निर्धारित किया जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के पृष्ठ संख्या 508 आधार पर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका तिथिक्रम प्रस्तावित किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान के नो और जोधपुरा नामक पुरास्थलों के उत्खनन से यह विदित हुआ है कि चित्रित धूसर पात्र परंपरा की पूर्ववर्ती कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के लोग भी लौह उपकरणों का उपयोग करते थे। ऐसी स्थिति में उत्तर भारत के कतिपय क्षेत्रों में लोहे की प्राचीनता प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व से पहले मानी जा सकती है। पूर्वी भारत इस क्षेत्र में उत्तरी काले ओपदार मृदभांडों की पूर्ववर्ती कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के साथ लौह उपकरणों का प्रचलन मिलता है। चिरांड सोनपुर ताराडीह पांडु राजा रधीवी और महिषादल आदि पूर्वी भारत के प्रमुख पुरास्थल हैं। उपलब्ध लौह उपकरणों में बाड़ फलकों भाला फलकों छेनी किलो आदि की गणना की जा सकती है। पांडु राजा रधीवी और लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त भट्टियां भी मिली हैं। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर लगभग 750 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में लौह तकनीक के प्रचलन का समय माना जा सकता है। मध्य भारत तथा दक्कन इसके अंतर्गत मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है। नागदा एरण उज्जैन कायथा प्रकाश तथा बहाल आदि प्रमुख उत्खनित पुरास्थल हैं। इन पुरास्थलों पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति की परिसमाप्ति के तत्काल बाद ऐतिहासिक काल की कृष्ण लोहित संस्कृति प्रारंभ हुई। ऐतिहासिक युग की यह संस्कृति लौह युगीन है। नागदा से 10 प्रकार के लौह उपकरण मिले हैं, जिनमें दुधारी कटार कुल्हाड़ी कामूट चम्मच चिमटी कुल्हाड़ी छल्ला बाड़ फलक चाकू और हसिया उल्लेखनीय है। एरड से भी कई प्रकार के लौह उपकरण मिले हैं। दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने यह मत व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश के कतिपय पुरास्थलों से मिलने वाले लोहे के उपकरणों को अपेक्षाकृत प्राचीनतर तिथि प्रदान की जा सकती है। उन्होंने इस संदर्भ में नागदा और एरड का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि इन पुरास्थलों पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं उसके बाद प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के पुरावशेष मिलते हैं। प्रारंभ में यह मान लिया गया था कि इन पुरास्थलों पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति की परिसमाप्ति के तत्काल बाद ऐतिहासिक युग की संस्कृति आरंभ हुई, परंतु अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नागदा तथा एरण एवं उन अन्य अनेक पुरास्थलों पर भी जहाँ पर संस्कृति के सातत्य की बात कही गई थी वहाँ से भी ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पृष्ठ संख्या 409 ताम्रपाषाणिक संस्कृति की परिसमाप्ति और आरंभिक ऐतिहासिक युगीन संस्कृति के बीच में अनेक वर्षों का अंतराल रहा होगा। इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि मध्य भारत के इस क्षेत्र में आरंभिक ऐतिहासिक युग की संस्कृति का विकास 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले हुआ था। चित्र 4 नैकुंड एवं महूरझरी बृहत पाषाणिक संस्कृति के लौह उपकरण सौजन्य एसबी देव 1970 से 1973 महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र नागपुर के आसपास में स्थित ताकलघाट खापा महूरझरी जुनापानी नैकुंड तथा खैरवाड़ा आदि पुरास्थलों के उत्खनन एसपी देव के निर्देशन में कराए गए थे। इन पुरास्थलों के उत्खनन के फलस्वरूप लौह युगीन बृहत पाषाणिक महाश्म संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन पुरास्थलों के उत्खनन से पृष्ठ संख्या 510 जो लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें भाला बाड़ फलक चाकू छेनी तलवार कटार कुल्हाड़ी कडाह कलछी मछली पकड़ने की कटिया, घोड़े की लगाम तथा किले आदि उल्लेखनीय है। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर विदर्भ क्षेत्र में लोहे के प्रचलन का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जा सकता है। कृष्ण लोहित मृदभांड तांबे के उपकरण मणिमाणिक्य के मन के प्रमुख पुरावशेष हैं। गाय बैल भेड़ बकरी के साथ घोड़े के पालन के साक्ष्य मिले हैं। बृहद पाषाणिक समाधियों के साथ साथ आवास क्षेत्रों का भी उत्खनन किया गया है। पशुपालन के साथ साथ कृषि आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार था। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की गणना सामान्यतः दक्षिण भारत में की जाती है। दक्षिण भारत के बृहद पाषाणिक समाधियों के उत्खनन से लोहे के उपकरण मिलते रहे हैं। बृहद पाषाणिक समाधियों में बनावट की दृष्टि से रेखाचित्र उपांत, दक्षिण भारत बृहद पाषाणिक संस्कृति के लौह उपकरण। पृष्ठ संख्या 511, पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु लोहे का ज्ञान इस संस्कृति के महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। लगभग 33 प्रकार के लोहे उपकरणों का निर्माण दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति के लोग करते थे। उल्लेखनीय लौह उपकरण प्रकारों में चिपटी कुल्हाड़ियों, फावड़ों, गैती, हसियों, बसुलों, छेनियों, भालों, तलवारों, कटारों, बाड़फड़कों, चाकुओं, तिपाइयों, त्रिशूल तथा घोड़े की लगाम और दीपकों को लटकाने वाले आंकड़ों आदि की गणना की जा सकती है। प्रारंभ में दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति की प्राचीनता के विषय में तरह तरह के मत व्यक्त किए गए थे। मार्टिमर हिलर ने इस संस्कृति की प्राचीनतम सीमा रेखा तृतीय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया था। उस समय तक मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था और दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के संपर्क के फलस्वरूप लौह तकनीक की जानकारी हो चुकी थी। विगत 2 दशकों में दक्षिण की बृहद पाषाणिक संस्कृति के कालानुक्रम के विषय में नवीन साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्कृति की प्राचीनतम सीमा रेखा 1000 ईसा पूर्व के आसपास खींची जा सकती है। कर्नाटक प्रदेश के धारवाड़ जिले में स्थित हल्लूर नामक पुरास्थल के बृहद पाषाणिक स्तरों की जो रेडियो कार्बन तिथियां आई हैं, उनसे इंगित होता है कि बृहद पाषाणिक संस्कृति का कालानुक्रम लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। तमिलनाडु के पय्यमपल्ली नामक पुरास्थल से संबंधित रेडियो कार्बन तिथियां बृहद पाषाणिक संस्कृति का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित करती हैं। इस प्रकार प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी और उसके साथ ही लौह तकनीक का प्रचलन हो चुका था। उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भारत में लौह तकनीक के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्यों के संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण में लोहे के उपकरणों का प्रचलन इन उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में हो गया था। उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत में लौह तकनीक के प्रसार से संबद्ध अनेक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या दक्षिण भारत में लोहे की जानकारी उत्तर भारत से हुई? उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। दक्षिण भारत के लोहे के उपकरण उत्तर भारत के लौह उपकरणों से किंचित भिन्नता रखते हैं, इसलिए कतिपय विद्वानों ने यह संभावना व्यक्त की है कि इन दोनों के प्रेरणा स्रोत भिन्न भिन्न रहे होंगे। उपर्युक्त मत को स्वीकार कर लेने पर कई अन्य प्रश्न उठ खड़े होते हैं। यदि दक्षिण भारत ने लोहे का प्रयोग उत्तर भारत से नहीं सीखा तो कहाँ से सीखा होगा? धातियों के प्रयोग के संदर्भ में पुरातत्वविद प्रायः यह नहीं मानते हैं कि हर क्षेत्र में लोगों ने अपने अपने ढंग से इनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। धातु शोधन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके प्रसार के लिए प्रायः यही माना पृष्ठ संख्या 512 जाता है कि किसी एक क्षेत्र में किसी धातु का प्रचलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ होगा। उस प्रारंभिक क्षेत्र के संपर्क में आने पर दूसरे क्षेत्रों में भी यह जानकारी फैली होगी। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः यह संकेत करते हैं कि लोहे के ज्ञान का प्रारंभ सर्वप्रथम एशिया माइनर के क्षेत्र में हुआ। दुनिया के अन्य क्षेत्रों ने लगभग 1200 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य के विघटन के पश्चात लोहे के प्रयोग की जानकारी प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में यदि हम यह कल्पना करें कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति के लोगों ने उत्तर भारत के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र से लौह तकनीक के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, तब यह समस्या उठ खड़ी होती है कि वह ज्ञान उन्हें क्या स्थल मार्ग से अथवा जल मार्ग से प्राप्त हुआ था। यदि यह मान लिया जाए कि उन्हें लौह तकनीक की जानकारी स्थल मार्ग से प्राप्त हुई थी, तो निश्चय ही उत्तर भारत में लौह के प्रारंभ की कहानी दक्षिण भारत से पुरानी होगी, लेकिन यदि यह स्वीकार किया जाए कि वह ज्ञान जल मार्ग से मिला था, तो फिर भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों से प्राप्त बृहद पाषाणी समाधियों की तिथियां पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों की समाधियों से पुरानी होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक यह बात सिद्ध नहीं की जा सकी है कि केरल से बृहद पाषाणी समाधियों के जो साक्ष्य मिले हैं वे आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु से प्राप्त बृहद पाषाणिक समाधियों से कालानुक्रम की दृष्टि से प्राचीनतर हैं। यदि भविष्य में उपलब्ध होने वाले साक्ष्य ऐसी स्थिति सिद्ध कर देते हैं तो इस समस्या पर नए सिरे से विचार करना होगा। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रचलन हो गया था। प्रारंभ में कतिपय पुराविदों का ऐसा अनुमान था कि भारत में लोहा और उत्तरी काले ओपदार मृदभांडों का कई क्षेत्रों में साथ साथ प्रचलन हुआ था, परंतु 20वीं शताब्दी विगत दशकों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातात्विक अन्वेषण तथा उत्खनन हुए हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में लोहे का प्रचलन निश्चय उत्तरी काले ओपदार मृदभांडों से बहुत पहले ही हो गया था। प्रारंभ में लौह धातु का प्रयोग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए ही मुख्यतः किया जाता था। चित्रित धूसर पातवी परंपरा के साथ लोहे के जो उपकरण मिले हैं उनका उपयोग सीमित कार्यों के लिए ही किया जा सकता था। इसी प्रकार बृहद पाषाणिक समाधियों के निर्माताओं ने भी अपनी तकनीकी पटुता का उपयोग पाषाण की समाधियों के निर्माण में ही किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पात्र तकनीकी जानकारी से ही आर्थिक स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए उपयुक्त राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता पड़ती है। पृष्ठ संख्या 513। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ पहले से उत्तर भारत में परिप्रेक्ष्य बदलने लगा था। उस समय लोहे का प्रयोग अपेक्षाकृत विस्तृत पैमाने पर किया जाने लगा था। लौह उपकरण प्रकारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित होने लगी थी। कुछ पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो गौतम बुद्ध के आविर्भाव के समय गंगा घाटी में संपन्न हुई वह लौह तकनीक के प्रसार पर ही प्रधान रूप में आधारित थी। लौह धातु के शोधन की तकनीक के दक्षिण बिहार के लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्रों में पहुंचने के बाद व्यापक पैमाने पर लौह उपकरणों का निर्माण तथा प्रयोग संभव हुआ। कृषि कार्य में लोहे के उपकरणों के प्रयोग के फलस्वरूप मध्य गंगा घाटी की कछारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक खेती करना संभव हो सका। गांगेय क्षेत्र के सघन वनों को साफ करके धान गन्ना कपास गेहूं तथा जौ आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी। कृषि ही नहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस काल में लौह तकनीक की प्रधानता वस्तुतः परिलक्षित होने लगी थी। लौह तकनीक के व्यापक प्रचलन का प्रभाव कृषि कार्य में ही नहीं बल्कि घरेलू उद्योग धंधों और वास्तुकला पर भी पड़ा। ताम्र तथा रजत के बने हुए आहत तथा लेख रहित ढले हुए सिक्कों के प्रचलन के फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य की विशेष प्रगति हुई। चित्र 6 गंगा घाटी आहत सिक्के। पृष्ठ संख्या 514। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में 16 महाजनपद थे जिनमें से 10 गंगा घाटी में तथा 6 में गंगा घाटी के बाहर स्थित थे। इनकी राजधानियां तत्कालीन नगरों अथवा कस्बों के रूप में थी। चंपा राजगृह श्रावस्ती साकेत वाराणसी तथा कौशाम्बी की गणना 6 बड़े राज्यों के रूप में बौद्ध ग्रंथ दिग्निकाय के महापरिनिब्बान सूत्र में की गई है। E.W. हॉकिंस के अनुसार पाली साहित्य में 6 शताब्दी के 60 नगरों और कस्बों का उल्लेख मिलता है। ये नगर परिखा और प्राचीर के से घिरे हुए होते थे। नगरों में भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग होने लगा था। इस प्रकार यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि गंगा घाटी में नगरी क्रांति के पीछे लौह तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। भारत में लोहे के प्रचलन को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 3 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्रथम उपकाल 1300 से 1000 ईसा पूर्व जब लौह उपकरण अत्यल्प मात्रा में मिलते हैं जैसे पाकिस्तान में पिराक और कर्नाटक में हल्लूर। 2 द्वितीय उपकाल 1100 से 800 ईसा पूर्व इस उपकाल में द्वितीय उपकाल 1000 से 800 ईसा पूर्व इस उपकाल में लोहे के न केवल पर्याप्त उपकरण मिलते हैं बल्कि गांगेय क्षेत्र के संपूर्ण विस्तृत भूभाग पर मिलते हैं। 3 तृतीय उपकाल 800 से 500 ईसा पूर्व इस उपकाल में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में और पर्याप्त संख्या में लौह उपकरण मिलने लगते हैं।